نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نئی تبدیلی، پیج نمبر 475، رہی کو مختوم. ہم دوسرا مرحلہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوا، صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا. چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے، کیونکہ ایک شک تھی نا کہ اب جنگ نہیں ہوگی 10 سال، تو احزاب کے 3 بازوؤں، قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو کٹ گیا، یعنی قریش. اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرت العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر. اتنی سی بات سے کیا سیکھا آپ نے؟ آپ دیکھیے کہ انسان ایک دوسرے کو جیسے نیکیوں پہ معاونت دیتا ہے یا امرونا بالمعروف ہوتا ہے نا، تو ایک سے دوسرے کو رغبت ملتی ہے، تو انسان اکیلے کام کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ مل کر زیادہ اچھا کام کرتا ہے. اسی طرح سے برے کام، غلط ارادے، دشمنیاں، جنگیں، لڑائیاں، یہ بھی ایک دوسرے کے بھڑکانے پہ ہوتی ہیں. ایک ٹھنڈا پڑ جائے تو باقی بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو زندگی میں اپنے لیے ہمیشہ ایک گول بنائیے کہ مالک، میں نے کبھی بھی کسی برے کام میں مددگار نہیں بننا. آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، بیک کر دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود بخود پیچھے ہوں گے تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم خاموش گواہ ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، چلو کوئی نہیں، ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں. نہیں، آپ برائی کو پروموٹ کرنے والے بنیں گے تو جب قریش جنگ سے پیچھے ہٹے تو باقیوں کو بھی لڑنے میں کچھ مزہ نہ آیا. جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے. وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے. وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدووں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر زک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے. اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز سے شر و فساد کے خلاف کیا. اس سے بھی عمل کی بات لیجئے، مومن کے لیے کام کرنے کے مواقع ہمیشہ موجود رہتے ہیں. جب آپ کو ایک طرف سے تھوڑا سا سکون ہو تو پھر دوسرا کام شروع کر دیجئے، جب دوسرا پورا ہو جائے تو تیسرا کر دیجئے. اور دوسری بات، ایک بیدار مغز لیڈر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر طرف نظر رکھنے والے لیڈر کی شخصیت تھی. کچھ لیڈروں کو پتہ نہیں ہوتا ان کی کرسی کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ ان کے اٹھتے ہی وہاں سے جاتے ہیں، کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. تو عقل مند لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو ہر طرح سے اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے دفاع کی کوششیں کرتا ہے. بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا. اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں. لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کر دی جائیں، یعنی یہاں ایک اور عمل کی بات لے لیجئے. صلح حدیبیہ بظاہر ایک بہت کڑوا گھونٹ تھا جو مسلمانوں نے بھرا، لیکن اس کے پیچھے خیر کیا تھی کہ اسلام کی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کا موقع آ گیا. دیکھیے، انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لمیٹڈ ہوتا ہے. ایک وقت میں آپ ایک کام کر لیتے ہیں، آپ دو بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا حق ادا نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو فوکس ہو کے کرتے ہیں تو اس میں خیر بہت ہوتی ہے. تو دعوت کے لیے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم بنا ہی نہیں تھا آج تک، جو حدیبیہ کی جنگ نہ کرنے کی شک کی وجہ سے بن گیا. تو مومن کو ہمیشہ خیر ڈھونڈنی چاہیے، شر میں سے خیر نکالنا اللہ کی سنت ہے. آسان تک رہو شعین و ہوا خیر الکم. हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे तो उसमें खैर हो। तो ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है और लॉकडाउन और इस तरह के जो वायरसेस हैं, इसकी खैर भी ढूंढा करें और आप अपनी ज़ात से लोगों को खैर दीजिए और खैर दीजिए और खैर दीजिए। शर की, खौफ की, अंदेशों की हौलाने वाली खबरें देने वाले दुनिया में बहुत हैं, उनको करने दीजिए अपना काम। लेकिन आप हमेशा अंधेरों में चिराग जलाइए, नाउम्मीदियों में उम्मीद जलाइए, इंशाल्लाह खैर होगी। बहरहाल, अमन के इस मरहले पर जो सुलह हुदैबिया के बाद शुरू हुआ था, मुसलमानों को दावत इस्लामी फैलाने और तबलीग करने का अहम मौका हाथ आ गया था। इसलिए इस मैदान में इनकी सरगर्मियां तेज तर हो गई जो जंगी सरगर्मियों पर गालिब रही। लिहाजा मुनासिब होगा कि इस दौर की दो किस्में कर दी जाएं। एक है तबलीगी सरगर्मियां, सरगर्मियां कहते हैं एक्टिविटीज को, यानी दावा एक्टिविटीज, और बादशाहों और सरबराहों के नाम खतूत, जो भी असल में दावा ही की एक फॉर्म थी। और दूसरी तरफ है जंगी सरगर्मियां, वॉर एक्टिविटीज। फिर भेजा ना होगा कि इस मरहले की जंगी सरगर्मियां पेश करने से पहले बादशाहों और सरबराहों के नाम खतूत की तफसीलात पेश कर दी जाएं, क्योंकि तबई तौर पर इस्लामी दावत मुकद्दम है, बल्कि यही वो असल मकसद है जिसके लिए मुसलमानों ने तरह तरह की मुश्किलातों, मसाइब, जंग और फितने, हंगामे और इस्तराबात बर्दाश्त किए थे। तो यहां से अब हम पढ़ेंगे बादशाहों और उमरा के नाम खतूत। और इसे एक साइड की बात नोट कीजिए कि जिन्होंने काम करना होता है ना, जिनको अपनी ज़िंदगी की बहुत ही मुख्तसर होने की कैफियत याद रहती है ना, वो फिर मौके के मतलाशी रहते हैं। वो ये नहीं कहते लोग हमें कहें, लोग हमें इनवाइट करें, लोग बुलाएं, लोग पूछें, फिर हम काम करेंगे। जिनको काम करना होता है वो तो आके पूछते हैं, यसलूना कमा ज़ा युन्फिकून, हम क्या खर्च करें, अपनी सलाहियतें किधर लगाएं, अपना वक्त किधर लगाएं, अपना माल किधर लगाएं। तो जब अंदर आग जलती है ना, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ पके। तो दीन के नाम पर इंसान की जिंदगी में जो हालात हो, जो मौके हों, उसके मुताबिक नीड ऑफ द आवर को ढूंढिए और काम शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको बाज़ुबान अंधेरों में चिराग बना देगा। बादशाह और उमरा के नाम जो खतूत लिखे गए वो क्या थे? 6 हिजरी के आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ लाए, तो आपने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिखकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, उसका जवाब ले लीजिए कि अब क्यों दी? इतने साल बाद, 13 साल मक्का में भी थे। सवाल पैदा होता है, मक्का में रहते हुए अगर आप किसी बादशाह को खत लिखते तो जवाब कौन देता? बादशाह तक पहुंचना भी नहीं था खत। मदीना में आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी एक हुक्मरान की हो चुकी थी, आप एक मुस्लिम स्टेट के वाली बन चुके थे। तो लिहाजा जब इंसान किसी भी लेवल पे आता है तो फिर उससे उससे जवाबदेही होती है। यानी आज मैं और आप भी किसी हुक्मरान को खत लिख सकते हैं दावत के नाम पे, लेकिन जब हम खुद हुक्मरान बने हों और फिर किसी हुक्मरान को ना लिखे तो जवाबदेही होगी। तो इंसान अपने अपने ओहदों के मुताबिक मुकल्लफ है कि वो अल्लाह का पैगाम कहाँ पहुँचाते हैं। आपने इन खतूत के लिखने का इरादा फरमाया तो आपसे कहा गया कि बादशाह इसी सूरत में खतूत कबूल करेंगे जब इन पर मोहर लगी हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। ये नक्श 3 सतरों में था, मोहम्मद 1 सतर में, रसूल 1 सतर में और अल्लाह 1 सतर में। शक्ल कुछ ऐसी थी, अगर आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो अल्लाह फिर रसूल फिर मोहम्मद। देखिए, मुकाम भी यही है, अल्लाह की हस्ती से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। नबी का मुकाम रसूल का था और आपका नाम सबसे नीचे है, तो ये मोहरे नबूवत के नाम पर आपकी अंगूठी में मौजूद रहती थी। फिर आपने मालूमात रखने वाले तजुर्बाकार सहाबा कराम को बतौर कासिद मुंतखब फरमाया। ये भी नोट कीजिए, कोई भी काम करे ना तो एकदम ना कूद पड़े। उस काम के माहरीन तजुर्बाकार जो पहले से उस काम में कुछ हॉट टू नो रखते हो, उनसे मशवरा भी कीजिए और उनको इन्वॉल्व भी कीजिए। और इन्हें बादशाहों के पास खतूत देकर रवाना फरमाया, क्योंकि देखिए, दूसरों के तजुर्बों से फायदा उठाना अकलमंदी है। कुछ लोग सारी जिंदगी ट्रायल एंड एरर करते हुए चले जाते हैं और पुख्तगी आने से पहले रुख्सती का वक्त आ जाता है। अलामा मंसूर पुरी ने वसूक कमराजे के यकीन के साथ बयान किया है कि आपने ये कासिद अपनी खैबर रवानगी से चंद दिन पहले यकम मुहर्रम सन 7 हिजरी को रवाना फरमाए थे। आगे हम इन खतूत और इन पर मुरतब होने वाले कुछ असरात यानी इन खतों का क्या जवाब आया, क्या रिस्पॉन्स मिला, वो हम देखेंगे। सबसे पहला खत जो अल्लाह के नबी ने लिखा था या लिखवाया था या भेजा था, निजाशी शाह हबश के नाम खत। देखिए निजाशी टाइटल होता था हबशा के बादशाहों का, और लफ्ज़ हबशा के साथ जहन में रखिए इथोपियंस, ब्लैक लोग थे। इथोपिया आज भी आप देखें कि अफ्रीका के उन इलाकों में आता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसकी एक सियासी हैसियत थी। इस निजाशी का नाम, यानी हर बादशाह को निजाशी कहते थे, और जिसको खत गया उसका नाम असहमा बिन अबहर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाम जो खत लिखा, इसे अमर बिन उमैया दमरी के हाथों से सन 6 हिजरी के आखिर में या 7 हिजरी के शुरू में रवाना फरमाया। उस दौर में तो दस बदस्त होते थे ना, कोई पोस्ट सिस्टम तो था नहीं, और कबूतरों से भी नहीं थे लोग भेजते होंगे शायद, तो बारह लोग खुद खत लेकर जाते थे, खास तौर पर शाही हदूद। तबरी ने इस खत की इबारत जिक्र की है, लेकिन अगर इसे बनजरे गायर देखा जाए, यानी ओपरा ओपरा ऊपर से देखा जाए, सतही सा मोटी मोटी निगाह डाली जाए, तो अंदाजा होता है कि ये वो खत नहीं है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद लिखा था, बल्कि ये गालिबन उस खत की इबारत है जिसे आपने मक्की दौर में हजरत जाफर को इनकी हिजरत हबशा के वक्त दिया था, क्योंकि खत के आखिर में इन मुहाजरीन का तस्करा इन अल्फाज में किया गया है, वक़ात बैस्तु इलैकुम इब्न अमी जाफरम व माहु नफरम मिनल मुस्लिमीन फैजा जाका फखरहम बदल तजब्बर। मैंने तुम्हारे पास अपने चचा के भाई चचेरे भाई जाफर को मुसलमानों की एक जमात के साथ रवाना किया है, जब वो तुम्हारे पास पहुंचे तो इन्हें अपने पास ठहराना और जबर इख्तियार ना करना। बहकी ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हो से एक और खत की इबारत रिवायत की है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाशी के पास रवाना किया था। इसका तर्जुमा ये है, ये खत है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निजाशी असहम शाह हबश के नाम। खत के लफ्ज और अल्फाज सुनिए और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी की फहम और फरासत पे। इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे, सलाम मन तबाइल हुदा। ये अंदाज है ऐसे शख्स को खत भेजने का कि जिसके अभी इस्लाम के लाने पे यकीन ना हो, तो सलामती तो उसी पे ही है ना जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वख्तहू ला शरीक लहू के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसने ना कोई बीवी इख्तियार की ना लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं इसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। क्या खूबसूरत जुमला है, असलम तुस्लम। ए अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से बाज बाज को रब अल्लाह की बजाय रब ना बनाए, बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं, अगर तुमने ये दावत कबूल ना की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह है। कितना दो टोक खत है। अब देखिए कि कॉमन ग्राउंड है, तालु इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, ये अंदाज सूरत आले इमरान में सिखाया गया। हमेशा कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें, इख्तलाफात को हवा ना दीजिए, चाहे कोई मुसलमान मसलक किसी दूसरे मसलक वाले को कुछ लिखे, कोई गैर मुस्लिम को लिखा जाए, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो बातें ली जाएं जो दोनों में कॉमन हो, और जो मेन इशू हो, जो मसला हो, जो उस कौम का इशू है, जैसे उस वक्त क्रिश्चियंस में हज़रत ईसा की बनियत का इशू बन चुका था, तो इसीलिए कहा कि ना बीवी दी बीवी है ना बेटा। क्या पता चला कि जो मर्ज है उसको भी टच किया जाएगा, लेकिन अंदाज बहुत हकीमाना होगा, रैपिंग स्टाइल होगा, और साथ ही देखिए एंड पे क्या कि नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन गुना तुम्हारे सर पे होगा, यानी उसके बुरे अंजाम की खबर भी दे दी ताकि वो एक दफा तो जरूर सोचे। डॉक्टर हमीदुल्ला साहेब पारिस ने एक और खत की इबारत दर्ज की जो माजी करीब में दस्तियाब हुआ, और सिर्फ एक लफ्ज के इख्तलाफ के साथ यही खत अलामा इब्ने कय्यम रहमहुल्ला की किताब जादुल माद में भी मौजूद है। डॉक्टर साहेब मौसूफ ने इस खत की इबारत की तहकीक में बड़ी अरक रेजी से काम लिया, यानी पसीना बहाया, दौरे जदीद के इक्तिशाफात से बहुत कुछ फायदा उठाया, और इस खत का फोटो का किताब के अंदर सब्त फरमाया है। خط کا ترجمہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام. یہاں بھی دیکھیے کہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ حکمران نہیں کہا, یعنی محمد حاکم مدینہ نہیں کہا آپ نے, آپ کی جو اصل حیثیت تھی وہی لکھی. اور نجاشی عظیم حبشہ اندر دی. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ان انزل الناس منازلهم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو. تو اللہ کے نبی نے بڑی عزت کے ساتھ پکارا اس کو. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد, اما بعد کا مطلب ہوتا ہے خطبے کے بعد, یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو قدوس اور سلام ہے, امن دینے والا, محافظ اور نگران ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف لگا دیا, بتول کی طرف ڈال دیا. یہ جو لفظ بتول ہے نا, کٹی ہوئی, بتبتل الیہ تبتیلا, سورت مزمل میں آتا ہے نا, سب سے کٹ کے ایک طرف ہونے والی, یعنی عزت کا کلمہ ہے. اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی, جسے اللہ نے, جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں, اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو, اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ, کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں, اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی, لہٰذا میری نصیحت قبول کرو, اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. نبت اللہ انداز ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ خط میں اپنا نام آخر میں ہے, اور یعنی شروع میں, سوری. عموماً ہمارے ہاں تو خط میں نام پیچھے لکھ جاتے ہیں نا, اینڈ پہ. پورا خط پڑھتے جائیں یا ای میل پڑھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, اپنا بھی اور جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا بھی نام اکٹھا اوپر ہی لکھ دیا. یاد رکھیے, کسی کو بھی مخاطب کریں نا, تو آپ کی تحریر بڑی کلیئر کٹ ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے, دوسرے کو تو یقین دلانے والی ہو, اور صرف وہ کریٹ ہی نہ کرتے رہیں کہ آپ پوجو تو جانے اور ہم تم کو مانیں, اور تم کون ہو, اور تمہیں کس کی طرف ہم بلاتے ہیں, اور کیا کچھ ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا. جہاں تک اس خط کی استنادی حیثیت, یعنی کہ کیا واقعی مستند بھی ہے کہ نہیں, اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, حیثیت کا تعلق ہے, تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا. لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا, بلکہ بیہقی نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے, اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمراء کے پاس روانہ فرمایا تھا. کیونکہ جس طرح آپ نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم درج فرمائی تھی, اسی طرح بیہقی کے روایت کردہ خط میں بھی آیت درج ہے. اس کے علاوہ اس خط میں صراحتاً اسہما کا نام بھی موجود ہے, جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے. اس لیے میرا گمان غالب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہما کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا, اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں. اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں. البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیہقی کے نقل کردہ خط کو پورے یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا ہے جو آپ نے اسہما کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا, حالانکہ اس خط میں صراحت کے ساتھ اسہما کا نام موجود ہے. تو والعلم عند اللہ, دیکھیے اس سے فرق زیادہ نہیں پڑتا, ایک سے زائد خط لکھے ہو سکتے ہیں. एक से जायद नुस्खे उसके हो सकते हैं। मेरा आपका काम, जब भी सीरत पढ़ें तो हमें ये शायद देखा करें तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि ये तरीकी बातें हैं, कौन एक एक चीज़ संभालता, कुछ चीज़ें छुपी रह गईं, कुछ चली गईं, कुछ आ गईं। असल तो बात हिदायत है कि हमें भी अपने लेवल पर रहते हुए, अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स में, टीचर हैं तो टीचर्स में, किसी भी मुल्क में है तो उस मुल्क के नाम, और इसी तरह से जहाँ हमारी पहुँच है वहाँ तक दीन की बात करते रहें। बाकी बारीकियों को छोड़ दीजिए। बहरहाल जब अमर बिन उमैया दमरी रजी अल्लाह उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत निजाशी के हवाले किया तो निजाशी ने इसे लेकर आंख पर रखा और तख्त से जमीन पर उतर आया और हजरत जाफर बिन अबी तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बारे में खत लिखा जो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निजाशी असहमा की तरफ से। इसके अंदाज में आजिज़ी देखिए, जिन दिलों में तकब्बुर और खिबर बड़ाई हो उनको उस हिदायत नहीं मिलती, इसको इसलिए मिल गई कि इसके अंदर तकब्बुर नहीं था। अल्लाह के नबी का नाम भी बड़ी इज्जत से लिख रहा है और अपने नाम के साथ भी कोई सबके लाख के नहीं है। ए अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह की तरफ से सलाम और इसकी रहमत और बरकत हो, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, अम्मा बाद। ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपका गरामी नामा मिला जिसमें आपने ईसा अलैहि सलाम का मामला जिक्र किया है। खुदाए आसमानो जमीन की कसम, आपने जो कुछ जिक्र फरमाया है, हजरत ईसा अलैहि सलाम इससे एक टिंका भड़कर न थे, वो वैसे ही हैं जैसे आपने जिक्र फरमाया। फिर आपने जो कुछ हमारे पास भेजा हमने इसे जाना और आपके चचेरे भाई और आपके सहाबा की मेहमान नवाजी की, और मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल हैं। और मैंने आपसे बैत की और आपके चचेरे भाई से बैत की और इनके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल किया। अल्लाह सीने खोल दे, जब अल्लाह दिल खोलता है ना तो इस तरह के जवाब आते हैं। बहुत बात है, देखिए बादशाह होकर और हुक्मरान होकर कोई मान जाए, इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के रास्तों में रुकावटें बहुत होती हैं, इनको अपनी सच्चाई और अपना आप मनवाना पड़ता है, कई दुश्मनियाँ होती हैं, कहीं सदारत छोड़नी पड़ेगी तो कहीं वजारत छोड़नी पड़ेगी, तो जितनी रुकावटें ज़्यादा होना उतना ज़्यादा इंसान ऐसी चीज़ों को वाकई हकीकत में पीछे डाल देता है। लेकिन ये शख्स मुसलमान हो गए। नबी सल्लम ने निजाशी से ये भी तलब किया था कि वो हजरत जाफर और दूसरे महाजरीन ने हबशा को रवाना कर दे, चुनाचे इसने हजरत अमर बिन उमैया दमरी को के साथ इसने अमर बिन उमैया दमरी के साथ दो कश्तियों में इनकी रवानगी का इंतजाम कर दिया। एक कश्ती के सवार जिसमें हजरत जाफर और अबू मूसा अशरी और कुछ दूसरे सहाबा रजी अल्लाह अनहम थे, बराह रास्त खैबर पहुंचकर खिदमत नबी में हाजिर हुए, और दूसरी कश्ती के सवार जिनमें ज्यादातर बाल बच्चे थे सीधे मदीना पहुंचे। ये भी मैनेजमेंट की तरफ इशारा है कि जिसकी जहां जरूरत थी उनको वहां भेज दिया गया। मस्कुरा निजाशी ने गजवे तबुक के बाद रजब सन 9 हिजरी में वफात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वफात ही के दिन सहाबे कराम को इसकी मौत की इत्तला दी और इस पर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। इसकी वफात के बाद दूसरा बादशाह इसका जानशीन होकर सरी राय सल्तनत हुआ यानी हुक्मरान बना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पास भी एक खत रवाना किया, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि इसने इस्लाम कबूल किया या ना किया। अब देखिए कि हिदायत जिनके नसीब में होती है वो दूर रहकर भी फ़ायदा उठा लेते हैं, और जिनको नहीं मिलनी होती उनको करीब से भी नहीं मिलती। और इस शख्स को क्या पता था कि इसने इतनी जल्दी फौत हो जाना है। अल्लाह ने इसके नसीब में हिदायत पेश की, इसने कबूल की। अगर ये सोचता ही रहता, किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी के खुदाने का इंतज़ार करता, तो हो सकता है कि फिर इस्लाम से बगैर ही चला जाता। तो अमल की बात नोट कीजिएगा कि जो नेकी का मौका आ जाए उस पर लब्बैक कह दीजिए। किसी के पास नेकियों के मौके का आ जाना भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत होती है, क्योंकि जब हम इन मौके की कदर नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मौके आने के बाद फिर चले भी जाते हैं। कोई इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे पास तो बहुत और भी मौके आएंगे। तो ये पहला बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला, कौन था? शाह हब्श था, असहमा था। इसके बाद दूसरा खत आपने भेजा मकौकस से, शाहे मिस्र के नाम। मकौकस मिस्र के बादशाहों का लकब होता था, ऐसे जैसे फिरौन एक वक्त में मिस्र के हुक्मरानों का लकब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रामीय नामा जुरैत बिन मती के नाम रवाना फरमाया, जिसका लकब मकौकस था, जो मिस्र और इस्कंदरिया का बादशाह था। नामा ग्रामी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मकौकस अजीम किब्त की तरफ, इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। ये भी बहुत अहम बात है। देखिए, खत लिखकर उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम्हें सलाम अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता और दिस एंड दैट, बल्कि क्या कहा कि जो सलाम कबूल करेगा बस उनके लिए हिदायत है। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, और इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा, लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले किब्त का भी गुनाह होगा। किब्त किब्ती थे, कौम की तरफ इशारा है। अहले किब्त एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराएं, और हम में से बास को अल्लाह की बजाय रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। सेम वही अंदाज है, थोड़ा सा मतलब लफ्जों का फर्क है, हल्का फुल्का सा। और ये भी इससे पता चलता है कि जब बड़े लोगों को बात से बात की जाए तो उसका अंदाज खास होना चाहिए। और फिर दूसरी ये भी बात है कि यानी झोल नहीं होना चाहिए गुफ्तगू में या बात में। खैर, खत तो मिलता जुलता था। इस खत को पहुंचाने के लिए हजरत खातिब बिन अबी बलता का इंतखाब फरमाया गया। वो मकौकस के दरबार में पहुंचे तो फरमाया, इस जमीन पर तुमसे पहले एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। किसकी तरफ इशारा? फिरौन की तरफ। अल्लाह ने इसे अव्वल इससे आखिर अव्वल के लिए इबरत बना दिया। पहले तो इसके जरिए लोगों से इंतकाम लिया, फिर खुद इसको इंतकाम का निशाना बनाया। लिहाजा दूसरे से इबरत पकड़ो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुम से इबरत पकड़े। देखिए अंदाज क्या खूबसूरत है कि इबरत पकड़ लो, ऐसा ना हो कि दूसरे फिर तुम से इबरत पकड़े। यानी कभी कभी फिर डायरेक्ट स्टाइल भी होना चाहिए शऊर को बेदार करने के लिए। मुकोकस ने कहा, हमारा एक दीन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते जब तक कि इससे बेहतर दीन ना मिल जाए। हजरत हातिब ने फरमाया, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं जिसे अल्लाह ताला ने मस तमाम मा सिवा दियान के बदले काफी बना दिया है, यानी इसके अलावा जितने भी दीन है उसके बदले में। देखो, इस नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो इसके खिलाफ कुरैश सबसे ज्यादा सख्त साबित हुए, यहूद ने सबसे बढ़कर दुश्मनी की, और नसारा सबसे ज्यादा करीब रहे। मेरी उम्र की कसम, जिस तरह हजरत मूसा ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बिशारत दी थी, इसी तरह हजरत ईसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिशारत दी है। और हम तुम्हें कुरान मजीद की दावत इसी तरह देते हैं जैसे तुम अहले तौरात को इंजील की दावत देते हो। जो नबी जिस कौम को पा जाता है वो कौम इसकी उम्मत हो जाती है, और इस पर लाजिम हो जाता है कि वो इस नबी की इताअत करे। और तुमने इस नबी का अहद पा लिया है, और फिर हम तुम्हें दीन मसीह से रोकते नहीं हैं, बल्कि हम तो इसी का हुक्म देते हैं। यानी कोई ऐसी बॉल खेलिए ही ना जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हर वो बात आप कह रहे हैं कि जिसके बाद उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आए, नफरत ना आए। ये कि डिफरेंस तो होता ही है, सोच तो है फर्क, लेकिन बात कहने का एक अंदाज भी होता है। मुकाकस ने कहा कि मैंने इस नबी के मामले पर गौर किया तो मैंने पाया, अब ये देखिए रियलिटी बोलने लगी है, वो किसी नापसंदीदा बात का हुक्म नहीं देते और किसी पसंदीदा बात से मना नहीं करते। वो ना गुमराह जादूगर हैं ना झूठे काहिन, बल्कि मैं देखता हूं कि इनके साथ नबूवत की ये निशानी है कि वो पोशीदा को निकालते और सरगोशी की खबर देते हैं। मैं मजीद गौर करूंगा। ये भी एक अच्छा अंदाज होता बात करने का। मकौकस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर एहतराम के साथ हाथी दांत की एक डिबिया में रख दिया और मोहर लगाकर अपनी एक लौंडी के हवाले कर दिया। फिर अरबी लिखने वाले एक कातिब को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हस्ब ज़ेल ख़त लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए मकौकस अजीम क़िब्त की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, अम्माबाद। मैंने आपका ख़त पढ़ा और इसमें आपकी ज़िक्र की हुई बात और दावत को समझा। मुझे मालूम है कि अभी एक नबी की आमद बाकी है। मैं समझता था कि वो शाम से नमूदार होगा। मैंने आपके कासिद का एजाज़ो इकराम किया है। आपकी खिदमत में दो लौंडियाँ भेज रहा हूँ जिन्हें किब्तियों में बड़ा मर्तबा हासिल है, और कपड़े भेज रहा हूँ, और आपकी सवारी के लिए एक खच्चर भी हदिया कर रहा हूँ, और आप पर सलाम। मुकोकस ने इस पर कोई इजाफा नहीं किया, इस्लाम नहीं लाया। दोनों लौंडियाँ मारिया और सीरीन थीं। खच्चर का नाम दुलदुल था, जो हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हो के ज़माने तक बाकी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने पास रखा और इन्हीं के बतन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए, और सीरीन को हजरत हसान बिन साबित अंसारी के हवाले कर दिया। तो क्या पता चला कि कुछ लोग नो भी कहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहते हैं। असल में यही चीज़ है कि इंसान जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेता है हक के साथ, सच के साथ, तो उतना ही अल्लाह ताला फिर उसको उसमें बरकत देता है। तो ये पढ़ने के बाद जो भी चीज़ मेरे दिल में आ रही थी वो भी शेयर कर देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दावत का हक अदा किया, पैगाम पहुँचाया, और जिसके नसीब में था उसको मिल गया। आप और मैं भी कभी भी किसी के मामले में बुखल ना करें। शायद अल्लाह ताला ने किसी की हिदायत आपके ज़रिए लिखी हो, शायद कुछ अरसे बाद मिल जाए, शायद अभी ना मिली तो ये कली किसी और वक्त पे खुल जाए, लेकिन कोशिश करते रहें। अपने हमसायों में, अपने कुर्बो जवार में उनको देखिए। ज़रा से इस पर यह भी गौर कीजिए कि बादशाहों को ख़त लिखना मुश्किल है या मासियों और मेड्स को और ड्राइवर्स को और कह लीजिए नेबर्स को बात करना। वो तो हमारे जैसे स्टेटस के लोग हैं ना। तो हमेशा हक बात की बात करते रहिए, तड़पते रहिए। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें दूसरों की दुआएं लेने वाला बनाए, उनकी हिदायत का ज़रिया बनाए, और हमसे अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से काम ले ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।